नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। भारत को होर्मुज जल डमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन फ्रांस के नेतृत्व वाली समुद्री पहल में शामिल होने का निमंत्रण। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उछाल। ईरान की चेतावनी, अगर अमरीका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। साथ ही उसने वाशिंगटन को समृद्ध यूरेनियम हस्तांतरित करने के दावे को भी खारिज किया। आज विश्व धरोहर दिवस है और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने डरबन में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसे ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में होर्मुज जल डमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए शुरू की गई समुद्री पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। होर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ये व्यापारिक मार्ग बेहद अहम है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के एलिसी पैलेस में बातचीत की। दोनों नेता होर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए लगभग 40 देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भी इस सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से व्यापक शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह नाकाबंदी तब तक पूरी ताकत और प्रभाव के साथ जारी रहेगी जब तक कि ईरान के साथ शत प्रतिशत समझौता नहीं हो जाता। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका उसके बंदरगाहों को निशाना बनाकर समुद्री नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों के आवागमन के लिए भी शर्त स्पष्ट कर दी है। एक रिपोर्ट।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पहले के बयान पर स्पष्टीकरण दिया। श्री बगाई ने कहा कि ईरान द्वारा पूर्व निर्धारित मार्ग से होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। ये घोषणा ईरान के विदेश मंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन पूरी तरह से खोल दिया गया है। ईरान ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया है कि उसने अपना समृद्ध यूरेनियम अमरीका को हस्तांतरित करने पर सहमति जताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में ऐसा कदम नहीं उठाएगा। उनकी ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में हर बात पर सहमत हो गया है। इसमें ईरान से संयुक्त रूप से समृद्ध यूरेनियम को निकालकर अमेरिका ले जाने की योजना भी शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने के ईरान के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह के लिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कौनीन क्षेत्र में इसराइली हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। इन हमलों में कई मकान और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू होने के बाद ये पहला हवाई हमला था। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात सहायता कोष यूनिसेफ ने कहा है कि गजा पट्टी में परिवारों को स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए उसने जिन 2 ट्रक चालकों को काम पर रखा था वे इसराइली गोलीबारी में मारे गए। ये घटना शुक्रवार सुबह उत्तरी गजा के मंसूरा जल संग्रहण केंद्र पर नियमित जल परिवहन के दौरान हुई। यूनिसेफ ने कहा कि उसने घटनास्थल पर अपना काम रोक दिया है। इसराइल के अधिकारियों से जांच करने का आग्रह भी किया है। यूनिसेफ ने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत मानवीय कार्यकर्ताओं, नागरिकों और आवश्यक जल अवसंरचना की रक्षा की जानी चाहिए। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खोलने की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई है। अमरीका में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगभग 1.8% की वृद्धि हुई, जबकि S&P और नेस्डेक कंपोजिट में तेल की कीमतों में गिरावट के कारण 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यूरोपीय बाजार भी इस दौरान उच्च स्तर पर बंद हुए, जबकि बॉन्ड यील्ड में नरमी आई और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर कमजोर हुआ। जर्मनी का DAX लगभग 2.2% चढ़ा, जबकि फ्रांस का CAC और स्पेन का IBEX में 1.92% की वृद्धि दर्ज हुई। ब्रिटेन का STSE भी उच्च स्तर पर बंद हुआ, हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण प्रमुख तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट के चलते इसमें लगभग 0.7% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत की पहली यात्रा के दौरान नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार मंच का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने का अवसर दिया गया। ऑस्ट्रिया के संघीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा और पर्यटन मंत्री वोल्फगैंग हेटमेंडॉर्फर ने भी इस मंच में भाग लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, श्रम प्रधान क्षेत्रों का लाभ लेने और लगातार सहयोग के लिए व्यापार मंच को संस्थागत बनाने पर बल दिया। उन्होंने सुधारों और उन्नत तकनीक को विकास का प्रमुख आधार बताया। चांसलर स्टॉकर ने इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि दोनों देशों का व्यापार लगभग 3 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि 160 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस मंच का एक बड़ा परिणाम द्विपक्षीय त्वरित व्यापार तंत्र FTM का शुरू होना रहा। इसका उद्देश्य निवेश को आसान बनाना, समस्याओं का समाधान करना और व्यापार को सरल बनाना है। विश्व दर्पण के लिए मैं लवली निगम।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उड़न तश्तरी यानी UFO से संबंधित दस्तावेजों का पहला बैच जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि UFO से संबंधित सामग्री की अमेरिकी प्रशासन की समीक्षा में कई दिलचस्प दस्तावेज सामने आए हैं। फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले में जनता की व्यापक रुचि का हवाला देते हुए अमरीकी एजेंसियों को UFO, अज्ञात हवाई घटनाओं और संभावित अलौकिक जीवन से संबंधित सरकारी फाइलें जारी करना शुरू करने का निर्देश दिया था। आज विश्व धरोहर दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि भारत की भूमि ऐतिहासिक धरोहरों, स्थापत्य कला के चमत्कारों और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण रही है, जो इसकी गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि धरोहरें किसी देश की समृद्ध संस्कृति और प्राचीन सभ्यता की जीवंत पहचान होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। महिला क्रिकेट में कल रात डर्बन में दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। एक अन्य मुकाबले में हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत को होर्मुज जल डमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन फ्रांस के नेतृत्व वाली समुद्री पहल में शामिल होने का निमंत्रण। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उछाल। ईरान की चेतावनी, अगर अमरीका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने वाशिंगटन को समृद्ध यूरेनियम हस्तांतरित करने के दावे को भी खारिज किया। आज विश्व धरोहर दिवस है और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने डर्बन में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।